Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Aradesh Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhagavad Bhaktajan, Shvetashvatara Rishi Pranita, कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत श्वेतश्वतर उपनिषद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। इस उपनिषद में बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण विचार व्यक्त किया गया है। कल हम लोगों ने विचार किया उपनिषद के प्रारंभ में ही सृष्टि के विषय में प्रश्न है कि इस सृष्टि के विश्व सृष्टि के स्रष्टा कौन है और इस स्रष्टा के बारे में जिज्ञासा प्रत्येक दर्शन में मिलता है, परंतु स्रष्टा के जो निश्चय पर पहुंचता है वो अलग अलग होता है और उसी को लेकर के इस उपनिषद में भी प्रारंभ करते हैं कि किम कारणम ब्रह्म, इस सृष्टि के मूल कारण ब्रह्म है क्या, अथवा ये जो नाम रूपात्मक जगत दृश्य जगत जो कि अचल नहीं है, सचल है, परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशील जगत के कोई ब्रह्म नाम के स्रष्टा बन सकता है क्या, ऐसा एक प्रश्न। और फिर सृष्टि के बाद ये जो अस्तित्व छोटे छोटे अहम रूप में भाषित हो रही है, ये जो जीव रूप में ये सब उत्पन्न कैसे हुए, अगर उत्पन्न हो भी गया है जीवामकेन, किसके द्वारा वो जीवित रह रहे हैं, और क्वचप संप्रतिष्ठा लय के प्राप्त हो जाने पर ये सब कहां पर स्थित होगा। और अंतिम प्रश्न विचार के लिए रखा गया, केन अधिष्ठिता सुखतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्। हे ब्रह्मविद गण, हम सब किसके द्वारा प्रेरित होकर के इस संसार का अनुवर्तन कर रहे हैं, अर्थात प्रथम श्लोक के द्वारा मंत्र के द्वारा व्यक्तित्व जीवन अथवा यह जीव पूर्ण रूप से स्वनिर्भर है ऐसा कह नहीं सकते, किसी अतीन्द्रिय अस्तित्व के अधीन है और उस अस्तित्व का ही अनुसंधान करना चाहिए उपनिषद ऋषि। इस दृष्टि को लेकर के श्लोक का उन्मोचन किया, प्रश्न के रूप में इतने सब रखा, अंतिम में समाधान के तौर पर ब्रह्म को न मान करके अन्य को भी माना जा सकता है क्या, ऐसा एक प्रश्न उठाते हैं। और अंतिम में लिखते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय नियम हेतु किम इति प्रश्न संग्रह। इसे संसार के सृष्टि स्थिति और प्रलय किस हेतु, अर्थात इसके नियम के कौन कारण है, नियंता कौन है, यही मुख्य प्रश्न है। एक पक्ष द्वितीय सूत्र के द्वारा बताना चाहते हैं कि ब्रह्म को कारण न माना जाए, भाई जो सत है, जो चित है, जो आनंद रूप है, सत कभी भी, सत शब्द का अर्थ है जिनका कभी भी बाध नहीं होता है। तो जो बाधित सत्ता है, बाध होने वाला है, परिवर्तनशील है, इसके कारण कोई सत अबाधित कैसे बन सकता, चित भी नहीं हो सकता, क्योंकि दृश्य जगत अधिक अचैतन्य जड़ के रूप में ही प्रतीति के होने के कारण, प्रतीति के विषय। तो जो चेतन है, चैतन्य घन है, वो कैसे इसके कारण हो सकता है। और महाराज अनवरत जो है आनंद के अनुसंधान में हम सब लगे हैं, तो जिनके स्वरूप में आनंद है वो भी कैसे कारण हो सकता है। तो क्यों ना सत चित आनंद से अतिरिक्त भिन्न कोई और को जगत सृष्टि के कारण माना जाए। वो कौन हो सकता है, कई कारण कोटि में अनेक 6-7 कारण को गिनती करवा रहे हैं। उपनिषद के द्वितीय मंत्र का उच्चारण अब करेंगे। कालश्वभावो नियतिर्यदृष्टः कालश्वभावो नियतिर्यदृच्छः भूतानि योनि पुरुषेति चिन्त्या भूतानि योनि पुरुष इति चिन्ता संयोग एषा न त्वात्मभावा संयोग एषा न त्वात्मभावा आत्मप्यनीश सुख दुख हेतो दात्मप्यनीश सुख दुख हेतो कालश्वभावो नियतिर्यदृच्छः भूतानि योनि पुरुष इति चिन्ता संयोग एषा न त्वात्मभावा आत्मप्यनीश सुख दुख हेतो कालस्वभाव नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्या। कहते हैं काल को कारण कोटि में रखा जाए, कारण माना जाए, स्वभाव को कारण माना जाए, नियति को कारण माना जाए, यदृच्छा को कारण माना जाए, भूतानि भूतों को कारण माना जाए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत को सृष्टि के कारण के रूप में स्वीकार किया जाए, और पुरुष यह जीव को ही इस संसार के सृष्टि के कर्ता के रूप में स्वीकार किया जाए। योनि शब्द जो आया इसको भगवतपाद आचार्य शंकर कारण शब्द से माना, और यह योनि जो है सब के साथ अन्वय करके समझना चाहिए। काल है योनि, स्वभावो योनि, नियतिर योनि, यदृच्छा योनि, भूतानि योनि, पुरुष योनि अर्थात काल कारण स्वभाव कारण नियति कारण यदृच्छा कारण भूत कारण और पुरुष को कारण रूप में चिंत्या इति चिंत्य अर्थात इस कारण को भी चिंतनीय है, ये भी कारण कोटि में रखा जा सकता है। अगर इसको कारण कोटि में नहीं रखते हैं तो ऐसा संयोग इन सब के समूह को संयोग को कारण कोटि में रखा जाए, भूत स्वभाव नियति जद्रिच्छा भूत और पुरुष इस सब के संयोग को इस सृष्टि के कारण माना जाए तो ना तू ऐसा भी संभव नहीं है। क्यों? आत्मभावात्, कहते महाराज इनके स्व कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी पराधीन है आत्माधीन है, और चूंकि आत्माधीन है इसीलिए अनीशः ये ईशन कर्तृत्व इसको दिया नहीं जा सकता। जीवात्मा को माना जाए अगर इनको पृथक काल स्वभाव आदि को पृथक पृथक रूप में आप कारण नहीं मानते हैं तो समूह को मिलाकर के कारण मानिए, उसका भी निषेध किया। आप कहते संयोग भी कारण नहीं है तो फिर जीवात्मा को कारण कोटि में रखा जाए, कहते नहीं। सुख दुख है तो महाराज सुख है और दुख है, और ये सुख और दुख के मूल में पुण्य है और अपुण्य है, पाप है। तो ये जीवात्मा जो है अधीन किसके है? पाप और पुण्य के, इसलिए यह भी ईश्वर अर्थात सृष्टा नहीं बन सकते। अब देखिए भगवत पाद आचार्य शंकर क्या लिखते हैं। काल शब्द किसको कहते हैं? अच्छा पहले भाष्य का अन्वेषण करें। काल स्वभाव इति योनि शब्द संबध्यते। काल स्वभाव इति श्लोक का उद्धरण किया, इस श्लोक का व्याख्यान किया जा रहा है। योनि शब्द संबध्यते, ये जो योनि शब्द आया है ये जो है सबके साथ जुड़ करके संबंध बना करके समझना चाहिए। दृष्टांत के तौर पर रखते हैं, कालो योनि कारणम स्यात्। काल योनि, योनि शब्द का अर्थ लिखते कारण, काल कारणम स्यात्, इसलिए काल योनि ये मूल उपनिषद में है। काल शब्द और योनि शब्द, भगवत पद आचार्य शंकर अर्थ करते हैं योनि कारणम, योनि शब्द का क्या अर्थ है? कारण। अब उसको काल कारणम स्यात् ऐसा अर्थ करके समझे, काल को ही इस जगत के सृष्टि के कारण माना जाए। स्यात् कालो नाम सर्वभूतानां विपरिणाम हेतु। काल किसको कहते हैं भाई? काल नाम सर्वभूतानां विपरिणाम हेतु। ऐसे तो न्याय में तो लिखते हैं काल किसको? अतीतादि व्यवहार हेतु काल, ये तो भूत भविष्यत वर्तमान, ये जो सृष्टि काल स्थिति काल प्रलय काल शब्द का व्यवहार करते हैं, वस्तु के अस्तित्व से काल को आप समझ सकते हैं। कोई भी वस्तु नहीं यार, आप काल का निश्चय कर सकते हैं? काल किसको कहेंगे? काल परिच्छेद है, परिच्छिन्न है कि अपरिच्छिन्न अस्तित्व वाला है? काल परिच्छिन्न है, परंतु काल किसको कैसे बोले? काल को ऐसा अन्य वस्तु द्रव्य की तरह आप उसको डिमार्क कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं ये काल है? काल को जब भी समझना होगा किसी न किसी सापेक्षता वस्तु की दृष्टि से उसको आप समझ सकते हैं। ये जो वर्ष है, ऋतु है, पक्ष है, क्षण है, ये सब काल है, ये भी देखिए वस्तु सापेक्ष है। इसलिए सृष्टि के कारण कोटि में अगर काल को रखते हैं तो काल के अस्तित्व को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि काल के अस्तित्व सृष्टि के सापेक्ष है। इसलिए काल थोड़ा चिंतनीय है, काल को समझना, क्योंकि भगवान स्वयं भी कहते हैं कालोऽस्मि अहम् कालः, मैं काल हूं। और काल शब्द सुनने से हम लोगों को वो जो प्रलय काल उसी को याद होता है, ऐसा नहीं। काल आप काल के बिना, समय के बिना, पल के बिना, घड़ी के बिना आप यूज नहीं कर सकते, व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये काल कैसे जगत के कारण हो सकता है? और भाष्यकार और दृष्टि दे रहे, सर्वभूतानाम विपरिणाम हेतु काल है। सभी भूतों की जो परिणाम है, परिवर्तन हो रहा है, वो किसके? भाई परिवर्तन में तो परिवर्तन शब्द का क्या अर्थ है? चेंज। तो ये परिवर्तन हो रहा है, आप बोल रहे हैं किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहे हैं? बस जो पहले था अब नहीं रहा, अब आने वाले दिन नहीं रहेगा, ये जो परिवर्तन हो रहा है इसको किसके सापेक्ष मान रहे हैं? तो ये परिवर्तन के हेतु किसको मानेंगे? काल। इसीलिए महाराज काल को परिवर्तन के हेतु मान सकते हैं, परंतु इस विश्व सृष्टि के कारण कोटि में इसको रखा नहीं जा सकता। इसलिए लिखते हैं सब कुछ भूत जो है, सभी भूत जो रूपांतर प्राप्ति, हाँ रूपांतर, एक रूप को छोड़कर के दूसरे रूप प्राप्त, चेंज हो रहा है, इसके पीछे एकमात्र काल है। ये जो वर्तमान काल आप बोल रहे हैं, तो वर्तमान काल का ड्यूरेशन क्या है? जो आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे, जान रहे हैं, ये वर्तमान काल ही भूत हो सकता है कि नहीं, भविष्य में रहा कि नहीं? बस तो किसके सापेक्ष आप काल कह रहे हैं? और जो काल वर्तमान मेरे लिए है वो शायद आपके लिए अथवा और किसी के लिए वो भविष्य भी हो सकता है। वर्तमान भी सबके लिए एक जैसा नहीं है। इसलिए काल को कैसे आप कारण कोटि में रख सकते? इसीलिए तो वो त्रयोदश अध्याय में स्पष्ट लिखते हैं ना, कालातीत होना चाहिए, काल के अधीनत्व में नहीं रहना है, सर्वसाधना। तो इसीलिए महाराज काल को तो कोटि में, कारण कोटि में नहीं रख सकते। काल नाम सर्वभूतानाम विपरिणाम हेतु, इसीलिए काल जो है सभी भूतों के रूपांतर प्राप्ति के कारण है। इसीलिए इस काल को जो है जोनि न मन्यते कारणम न स्वीकर्तव्यम। तो मूल श्लोक में काल आया, फिर द्वितीय आया है क्या? स्वभाव। अब स्वभाव को कारण कोटि में रखे। स्वभाव किसको बोलते हैं? स्वभाव से तो हम लोग परिचित है ना, नेचर क्या है, और थोड़ा क्लियर हो जाए। प्रकृति, प्रकृति मतलब थोड़ा दृष्टांत दिया जाए, एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? वही तो प्रकृति है, स्वभाव है, जो बोल रहे हैं आप लोग नेचर है, इसको और थोड़ा डिफाइन कीजिए ना, एकदम बंडल ऑफ थॉट्स। ठीक उत्तर सब लोग आप दे रहे हैं, कह रहे हो कि स्वभाव को समझने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ना। स्वभाव मीन है उस वस्तु के स्वात्मभूत जो रूप है, अथवा जैसे अग्नि, अग्नि के स्वभाव क्या बोलेंगे? उष्णता। पानी, पानी के स्वभाव क्या है? शीतलता। तो ये स्वस्य भाव, जो उनके भाव है वो कभी भी त्याग नहीं सकते, वो है। अगर बदलता है, छोड़ सकता है, तो वो उनका स्वभाव, इसलिए वो है स्वभाव। इसलिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ये बड़ा क्रोधी स्वभाव वाला है, परंतु वो क्रोधी स्वभाव आप उनके अंतर्भुक्त नहीं कर सकते। स्वभाव मतलब उनके ऐसे नेचर, ऐसे प्रकृति कि उस प्रकृति को छोड़ करके उसके अस्तित्व का पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो है स्वभाव प्रकृति। बस वो ही जो जाता नहीं है, ऐसा स्वभाव है वो स्वभाव है। कहते वो स्वभाव को कारण कोटि में रखा जाए।